أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب کی جب وحی کی جب ابتدا کی تو ان الفاظ کے ساتھ کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خلق کیا. تو پڑھنے کا موضوع اور لکھنے کا موضوع، یہ سرشتے انسانی جب سے انسان وجود میں آیا تب سے ہی انسان کے وجود کا ہی حصہ رہے ہیں. اس کے تھرو ہی انسان نے ترقی کی ہے، اس کے ذریعے انسان نے اور منازل طے کیے ہیں. تو برادران نے جب مجھ سے کہا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں تو میں نے گزارش کی کہ کوئی اور دوست بہتر ہوں گے جو کہ ان موضوع بات کر سکیں، لیکن بعد میں جب انہوں نے انسسٹ کیا تو میں نے کہا کہ شاید میرے پاس جو دو چیزیں ہیں وہ میں بتا سکوں آپ لوگوں کو. تو اس موضوع پہ یعنی کہ یہ ایک وسیع موضوع ہے اس حوالے سے کہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بذات خود ان کو ہم اگر کیٹیگرائز کریں تو دو چیزیں الگ ہیں، ایک ریڈنگ ہے اینڈ سیکنڈ از رائٹنگ. اینڈ دین پھر اس میں اندر آ جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یعنی کہ ریڈنگ ایک ہوتی ہے اکیڈمک پرپزز جو کہ ہم یونیورسٹی کیریئرس اپنی ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں، اینڈ سیکنڈ تھنگ از کہ ہم جو اپنے باقی جو چیزیں زندگی میں آتی ہیں ان کے لیے ہم ناولس ہیں، فکشنس ہیں، آپ کے مذہبی کتابیں ہیں، باقی ساری جو چیزیں وہ پڑھتے ہیں. سیم چیز ہے رائٹنگ کے لیے بھی. سم ٹائمس آپ پروفیشنلی رائٹ کرتے ہیں اپنے ایگزامس کے لیے، رپورٹس، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح کے ریسرچ پیپرس، اور دوسری قسم کی جو تصانیف یا جو آپ کی ہوتی ہیں رائٹ اپس وہ اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں ہم لکھتے ہیں اخبارات کے لیے، جنرل موضوع جو کتابوں کے ہوتے ہیں ان پہ لکھتے ہیں. تو ان دونوں کا ایک تھوڑا سا پہلے تو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر ان کے اندر دو حصوں کی تقسیم ہے. تو ہمارے پاس وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جو تقریر کا دورانیہ ہونا چاہیے وہ ایک مومن کی داڑھی کی طرح ہونا چاہیے، جو کہ نہ تو اتنا ہی کم ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یعنی کہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی بڑی زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو کہ لگے کہ یعنی کہ یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو کوشش کریں گے ہم مختصر رکھیں اور ان دونوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں، اور باقی انشاءاللہ ہوا تو پھر باقی کوئی اور دوست یا میں کبھی پھر انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے. تو ابتدا سے ہمارے پاس جو بنیادی مسئلہ جو آج کل ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ایڈریس جب کر رہے ہیں تو یہ ہم آج کل ہیں سیمسٹر سسٹمس میں. اینڈ سیمسٹر سسٹم کا جو المیہ ہے یا جو پریشانی کی بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ باقی اس کی خوبیاں اور باقی اس کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ریڈنگ اسکلس کے حوالے سے یہ کافی اس کا برا اثر اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمیں سلائڈس مل جاتی ہیں، پریزنٹیشنز مل جاتی ہیں، نوٹس ہم ادھر ادھر سے کر کے ایک بندہ لکھتا ہے اور دین پھر باقی بھی اس کو کاپی کر لیتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں جو ان ڈیپتھ انالیسز یا ان ڈیپتھ آپ کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں ابھی کچھ سال پہلے ایک سروے ہوئی ہے اور سروے نیٹو امریکن کی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے سیکنڈ لینگویج ہو انگلش، لیکن انہوں نے کہا کہ دو بیسک اسکلس ایسے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی فیلیورس کا میکسیمم ریٹ ہے. اینڈ پہلا اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ریڈنگ اسکلس، اینڈ سیکنڈ از میتھ اسکلس. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس بھی بیسکلی وہ ریڈنگ پراپرلی نہ ہونے کی وجہ سے میتھ میں بھی اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں. تو اگر ریڈنگ امپروو ہو جائے تو دین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو میتھمیٹکس ہے وہ بھی ایزیئرلی آپ کی کمپریہنشن اسٹارٹ آپ کی ہو جائے گی اینڈ آپ میتھمیٹکس میں بھی بہتر ہو جائیں گے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ریڈنگ کے تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ سندھی میں، اردو میں یا انگلش میں، ہم تو چوتھے پانچویں کلاس سے ہم انگلش پڑھتے آ رہے ہیں، پہلی کلاس سے اردو یا سندھی میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تو ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ یعنی کہ میں ایک پیج اسٹارٹ کرتا ہوں اسٹارٹ سے اینڈ دین اپ ٹو اینڈ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس میں تو کوئی ایسے ایشو نہیں ہے. تو سپوز کریں کہ ایک مکینک ہے، مکینک ہاتھوں سے کام کرتا ہے، اینڈ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی بندے کے پاس ہاتھ ہوں تو وہ اچھا مکینک ہے. या अगर हम कहें कि हम सबके पास वॉइस है, हम सब अच्छी तरह से हम बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन इसका मकसद ये है कि हम में से हर जिस किसी के पास भी वॉइस है वो अच्छा सिंगर भी है, अच्छा नोआ खान भी है, अच्छा बाकी जो आपके वॉइस के आर्ट्स के जो टाइप्स हैं वो भी कर सकता है, वो नहीं कर सकता वो, बिकॉज के यानी कि एक चीज है बेसिक स्किल्स, उसकी फंक्शनलिटीज या उसका पोटेंशियल, एंड सेकेंड है उसको इम्प्रूव करना। तो रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो रीडिंग इज अगेन लाइक सेम थिंग, आपके पास एक रीडिंग का मकसद है कि आप उसको एनालाइज करें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें, उस पर क्रिटिक करें। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सेम लाइक अनदर आर्ट, जिस तरह से सिंगिंग एक आर्ट है, जिस तरह से मैकेनिक काम होना एक आर्ट है, जिस तरह से कारपेंट्री एक आर्ट है, जिस तरह से और कोई भी फन है, इसी तरह से ये भी एक स्किल है, ये भी अनदर स्किल टाइप है, जिसको अब जब तक हम पॉलिश नहीं करेंगे, जब तक इसको सही तरह से उसको ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे पास वो बेसिक फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन उसको उसके जरिए हम जो चीजें कर सकते हैं वो नहीं हो सकेंगे। तो सपोज करें कि आपके जिंदगी में भी हुआ होगा इस तरह से, और मेरी जिंदगी में भी, या आपने किसी को देखा होगा, तो आप कोई गेम खेल रहे हैं या आप कोई कोई अपने घर का छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो होता ही है कि आपको कोई और बंदा बताता है कि आपको कोई जख्म लगा है, या आपका खून तो नहीं, या आपके टांग पे थोड़ा सा खून बह रहा है, या आपके पाँव में क्या हुआ है, आपको खून खून का निशान है, एक आपको पता नहीं चलता, एक सीमलेसली एक आप इस तरह से एक और फंक्शन में इतने बिजी होते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि नहीं, कि जिस चीज वजह से, हालांकि यानी कि वो जब जख्म लगा है उस वक्त आपको दर्द भी हुआ होगा, उस वक्त आपको उसकी ब्लीडिंग जब हो रही है तो देन ऑफ कोर्स उसमें से ह्यूमन बॉडी को तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन चूंकि आप दूसरे फंक्शन में इतने बिजी थे तो दैट्स वाई आपको पता ही नहीं चला कि हमें मुझे ये चीज भी हुई है। तो सिमिलरली जो कुछ ऐसे सीमलेसली हम कुछ चीजें ऐसी एक्टिविटीज में मसरूफ हो जाते हैं तो हमें उनका पता ही नहीं चलता है कि यानी कि वाकई हमारे पास कोई चीज हुई है या नहीं हुई। लेकिन रीडिंग की जब बात आती है तो रीडिंग में हमारे पास ये रीडिंग इस तरह से एक काइंड ऑफ टॉर्चर लगता है कि हमें यानी कि रीडिंग या राइटिंग, तो हम हाथ पांव फूल जाते हैं और हम उसको मैक्सिममली अवॉइड करते हैं टिल द लास्ट डे या लास्ट मोमेंट, जब तक हम वो कर सकें उसको। तो बेसिकली ये कोई एक बंदे से मखसूस नहीं है, ये जिन लोगों ने न्यूरो साइंस पे काम किया है उनमें से साइंटिस्ट ने ये कहा है कि असल में इसका एक फिजिकल एक है आर्टरी वहां पे, जिसको जब आप ये कहते हैं कि कोई न्यू काम करें तो उसको वो पहले ही अपने आप सिग्नल प्रोसेस करती है कि नहीं, कि नहीं जी ये एंड दैट विल बी अ डिफिकल्ट मैटर, लेकिन फिर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो देन रीडिंग अगर आप शुरू करें तो फिर आपको लगता है दैट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, एंड फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से उसको स्मूथ हो जाना शुरू हो जाती है। तो इस स्किल को हम जो बेसिकली पॉलिश करते हैं या जिस तरह ग्रूम करते हैं इसको, इसके कुछ हैं टिप्स हैं, कुछ इसका मैकेनिज्म है, कुछ उसके कहें कि किस तरह से उसको प्रोसेस किया है लोगों ने। उस तक जाने से पहले एक बात ये जरूरी है कि हम ये समझें कि ये पढ़ना बेसिकली जरूरी क्यों है, बिकॉज हमने जब तक जिस तरह से इंसानी तहजीब ने तरक्की की है तो ये हमें जो आज मुश्किलात दरपेश हैं, या जो हमें जो मसाइल सपोज करें कि घरेलू मसाइल हैं, या जे के दोस्तों के मसाइल हैं, या प्रोफेशनल मसाइल हैं, या मुआशरे के मसाइल हैं, वो कोई इस तरह से नहीं कि अनूनी तौर पे हमारे पास आ गए हैं, बल्कि ये दुनिया में हर जगह दुनिया के बहुत सारे मुआशरों में, तो हम हमारे अपने मुआशरे में हमसे पहले बहुत सारे लोगों को ये दरपेश आए हैं और लोगों ने उनको कन्फ्रंट किया है, उनके साथ डील किया है, एंड देन उन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो जब हम ये कह रहे होते हैं कि नहीं किताबें पढ़ रहे होते हैं या नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं, तो होता ये है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से जो गुजर चुके होते हैं लोग, उनके जरिए हम अपने जहन और दिमाग को एक्सपेंड कर रहे हैं और हम उनके एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको डील किया। तो होता यह है कि हमारी अपनी जो चीजें होती हैं, जिस तरह से हम डील कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ एक ही जाविया नजर आ रहा होता है उस चीज का, तो बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ के और उनके एक्सपीरियंसेस का पता लगता है जब हमें, तो हमें लगता है कि नहीं, इतनी चीज मुश्किल नहीं है जितनी इसको हम समझ रहे थे। तो एक तो ये कि जिंदगी के बारे में हमारा जाविया निगाह, ये जो पढ़ना है हमारा जनरली, वो हमारा बढ़ाता है एंड देन हमें इस बात पे तैयार करता है, यानी कि जिंदगी के इन मसाइल को हल किया जा सकता है, ये इतनी हौसला शिकन बातें नहीं है और ये उम्मीद खत्म करने की चीज नहीं है, बल्कि इसको हम एड्रेस कर सकते हैं इसको, और ये कर सकते हैं, यानी कि बाकी लोगों को जब आप देखते हैं कि यानी उन्होंने इतने सारे कारनामे अंजाम दिए हैं, उन्होंने ये कुछ किया है, तो मतलब ये है कि यानी कि उनके पास कोई अलग से एक जहन नहीं था, उन्होंने भी इसी तरह से इसी मुआशरे में इन्हीं मसाइल के साथ जिंदा रह के उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, तो आपको ये कन्विक्शन देता है ये चीज कि आप भी कर सकते हैं ये चीजें, इसमें कोई ऐसी कोई अजूबा नहीं है जिसको आप करें। सेकेंड थिंग इज, जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं, तो प्रोफेशनली में जब एजुकेशन में या प्रोफेशनली जो लर्निंग है, प्रोफेशनल रीडिंग है, वो पहले ये होता था कि हम एक 4 साल की या मैक्सिमम मास्टर्स या पीएचडी हमने कर लिया, फिर सारा साल एक जॉब, सारी जिंदगी एक जॉब मिलती थी एंड देन उसको कंटिन्यू करते थे। लेकिन दुनिया में जिस तरह से इंफॉर्मेशन या नॉलेज का फैलाव हो रहा है, वो इस तरह से है कि यानी कि इंसान 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 ने जितना इल्म पैदा किया था पिछली, जब से हम रिकॉर्डेड नॉलेज हमारे पास है, तो उससे जितना भी नॉलेज है और उसको देखें, कंपेयर करें आज 2 साल पीछे से, तो ये 2 साल वाला जो इल्म है, जो लास्ट 2 ईयर्स में जो नॉलेज क्रिएट हुई है, जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, वो उससे ज्यादा है जो सारी इंसानियत, इंसान ने पिछले इतनी सारी सदियों से की हुई है। तो दैट्स वाई इंफॉर्मेशन का फैलाव बढ़ा है, इंफॉर्मेशन की क्रिएशन बढ़ी है, तो उससे हुआ ये है कि हमारे जॉब नेचर, हमारे कैरियर्स पे भी चेंजिंग्स आई हैं, और उसके नतीजे में क्या हुआ है, उसके नतीजे में ये हुआ कि पहले एक इंसान जो एक ही जॉब में सारी जिंदगी गुजारता है, अब कम से कम 5-6 जॉब्स चेंज करता है एंड देन आगे आगे ये कहा जा रहा है बेसिकली जॉब्स नहीं बल्कि कैरियर्स चेंज की बात होगी, क्योंकि आप एक कैरियर्स कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ कि यानी कि वक्त के साथ वो कैरियर ही खत्म हो गया और फिर आपके पास आपने एक नया करियर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होगा वो होगा अनलर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स, अनलर्न प्रीवियस आपकी जो चीजें हैं वो, एंड जो लर्न करें आप न्यू चीजें करें। तो उसके लिए अब आप ये कहें कि हर वक्त आपने अंडर ग्रेड कर ली, मास्टर्स कर ली, पीएचडी कर ली, तो दोबारा तो आप नहीं जा सकते यूनिवर्सिटीज में, तो इनके इंसान की जो अपनी जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन एनालिसिस की जो सलाहियत होगी वो उसको काम आएगी, अदरवाइज हम किसी भी कैरियर के किसी भी शोबे में और किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकेंगे। जिस तरह से बहुत सारे हमने शोबे देखे हैं, बहुत सारी चीजें कारोबार देखे हैं हमने, जो हमारे आंखों के सामने ही खत्म हो गए, हमें लगता था कि तांगा गाड़ी और ये हमारे पास जो पहले बहुत सारे ऐसे कैरियर्स थे जिनको लोग करते थे, लेकिन आज वो नहीं है, और सिमिलरली ये सीमित है, अब हमारे पास जो हम आज जो चीजें पढ़ रहे हैं वो अगले दौर में आउटडेटेड हो जाएंगी। कल तक हम कह रहे थे कि जो सपोज करें कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग आर द बेस्ट फील्ड्स और उनको सदाबहार हैं, उनको कोई भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनकी इतनी सारी डिवीजन्स और उनकी माइक्रो स्पेशलाइजेशन इतनी आ गई हैं, तो दैट्स वाई हमें जब तक उनको लर्न ना करें तब तक हम लेटेस्ट इंडस्ट्रीज में इन नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई ये प्रोफेशनली प्लस पर्सनली जो ग्रोथ के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके रीडिंग स्किल्स और हमारे राइटिंग स्किल्स जो हैं उनको पॉलिश करें और हम अपने आप पे इसके थ्रू इन्वेस्ट करें, ताकि हम अपनी जाती जिंदगी के जो मसाइल हैं, अपने माशरती जिंदगी के जो मसाइल हैं उनको भी सॉल्व कर सकें और अपने कैरियर और अपने लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस कर सकें। तो देन ये क्वेश्चन आता है कि चलें ये हमें पता चल गया कि दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स हमने इस्लाम के हिसाब से भी देख सकते हैं कि यानी कि कितनी ताकीद की है इल्म पे, और देन हमें ये पता है कि यानी कि कैरियर और लाइफ में भी हमें जरूरत है, देन व्हाट शुड वी स्टडी, किस चीज को हमें पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले ये है कि आप ये समझें कि यानी कि जिस तरह से हम व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या फेसबुक पोस्ट हैं या जिस तरह से आपके अखबारों के कॉलम हैं, दीज आर नॉट रीडिंग मटीरियल। ये आपके शॉर्ट टर्म आपको कहें कि उस वक्त कोई एक्टिविटी है, बट दैट डज नॉट प्ले वेरी मच रोल इन योर ग्रोथ ऑफ योर माइंड, और आपके ऊपर नया पर्सपेक्टिव देने के लिए। नया पर्सपेक्टिव देने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उन चीज़ों को पढ़ें जो कि स्टार्ट टू एंड एक चीज़ को एड्रेस करती हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें हम कहते हैं यानी कि एक्सपर्ट्स, जो जिन लोगों ने सारी जिंदगी सपोज करें कि एक शोबे में गुजारी है, एक फील्ड गुजारी है, अब उन्होंने अपने पीक ऑफ द करियर में या एट द एंड ऑफ द करियर अब उन्होंने जाके एक किताब लिखी है या दो किताबें लिखी हैं, तो उनकी सारी जिंदगी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें मुफ्त मुफ्त या कहेंगे आजकल इंटरनेट पे पीडीएफ मिल जाता है हमें, और देन अगर अदरवाइज नहीं तब भी हमें यानी कि 1-2 हज़ार में हमें चीज़ें वो मिल जाती हैं जिसको हम लर्न कर सकें। तो उससे होगा ये कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो होगी उन एक्सपर्ट लेवल की। अब ये कहा जा सकता है कि यानी कि अब उसमें जो जितनी वोकेबुलरी यूज हुई होगी या जो उसमें टर्मिनोलॉजी यूज हुई होगी या जो उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए होंगे वो होंगे उसके एक्सपर्ट लेवल के, वो तो बेसिक लेवल के नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मली जब बुक एक लिखी जाती है तो उसका पहले जो चैप्टर्स हैं अगर आप एक सब्जेक्ट पे उठाएं तो उसके स्टार्टिंग से लेके एंड एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाते हैं। लेकिन अगर आप सपोज कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि नहीं कि एक्सपर्ट लेवल के लिए लिखी हुई चीज़ें, तो देन भी उससे पहले जो प्री रेक वाली बुक होती हैं वो भी एक्सपर्ट्स की लिखी होती हैं। तो देन बेहतर ये है कि आप उनको स्टडी करेंगे तो उससे आपका जो बेस बनेगा वो होगा जिसको हम सॉलिड कह सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं होगा कि आप सिंपली एक किसी की भी बुक उठा के देखें एंड देन आपको पता लगे कि नहीं उसने तो नहीं काम किया हुआ इतना। तो सिमिलर इस ये आपको इजीली मिल जाती हैं चीज़ें इनके थ्रू, जिस फील्ड में आपका ताल्लुक है वो आपको पता चल जाएगा थोड़े से एफर्ट से कि उस फील्ड के हु इज हु, उसके अंदर कौन किसने क्या काम किया हुआ है। तो ये जब आपको पता चल जाए तो वहां से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप सपोज कर रहे हैं कि लिटरेचर में काम करना चाह रहे हैं, आपने उर्दू फिक्शन में बात करनी है, साइंस फिक्शन में बात करनी है, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गिने चुने लोग हैं ऐसे जिन जिनका एक नाम बना हुआ है और जिनने अपनी शनाख्त बनाई है अपने किताबों के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू, पोइट्री में हो चाहे साइंस फिक्शन हो चाहे नॉवेल्स हो चाहे शॉर्ट स्टोरीज हो। तो उन लोगों को बेहतर है कि पढ़ें, तो उससे जो आपका टेस्ट डेवलप होगा उसके जरिए आपकी जो कहें के यानी के मेच्योरिटी बनेगी दैट विल बी एट द हाईएस्ट लेवल। अगर आप एक कच्चे आदमी से शुरू करेंगे तो फिर ये होगा कि यानी कि आपको आपकी वो टेस्ट ऑफ कोर्स नहीं डेवलप होगी। लेकिन फिर ये होता है कि एक लेवल पे आपके कहते हैं कि नहीं चलें ये क्लासिक्स हैं या जिन लोगों ने एक्सपर्ट लेवल काम किया था वो तो मैंने पढ़ लिया है, देन फिर आप लेटेस्ट या आज की दुनिया में जितने लोग हैं जो कि लेटेस्ट लिख रहे हैं, नई रिसर्च कर रहे हैं या नया लिख रहे हैं, वो फिर हो सकता है कि नए लोग भी हों जिनमें से आप जिनको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये होगी हमारे पास उसकी क्या पढ़ने की, अब क्या पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए एंड देन क्या पढ़ा जाए, किसको पढ़ा जाए। इसके बाद हम आते हैं कि बेसिकली पढ़ा किस तरह से जाए। तो पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं एंड वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क भी करती हैं, तो दो तीन को हम डिस्कस करेंगे फॉर ब्रीफ रिव्यू उनका लेंगे ताकि वो आसानी से हमारे पास उनको हम समझ सकें। सबसे पहले जो चीज़ है जो इस इन तीन चार टेक्निक्स में वो ये है कि इस इन सब टेक्निक्स का बुनियादी एक फार्मूला ये है कि आपने अपनी कंप्रिहेंशन को बढ़ाना है, रोट लर्निंग नहीं। मीन्स कि आपके पास जो अगर आप सपोज करके क्रिकेट के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, दैट्स वेरी इजी टू एग्जाम्पल, या आप कहें कि यानी कि आप कोई मसल बनाना चाह रहे हैं अपने, तो किस तरह से होता है ये कोई वन डे जॉब नहीं है, इसको आपने डेवलप करना है स्लोली वन बाय वन ईच डे टिल आप उस लेवल पे पहुंच जाएं। तो सिमिलरली ये जो टेक्निक्स काम करती हैं वो स्लोली काम करती हैं, वो एक दिन में नहीं काम करती हैं कि आपने सारे सेमेस्टर सपोज करें कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा एंड देन मैं आखिर रात कहता हूँ कि मैंने याद कर लूंगा उसे, तो इस तरह से काम नहीं होगी चीजें इस तरह से। यानी कि आपने उसको इसको रीडिंग को अपनी एक काइंड ऑफ हैबिट बनाना होगा, तब जाके ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे। फिर आप जाके एक्सपर्ट कहलाएंगे या आप उसे अपनी फील्ड के माहिर कहलाएंगे या एवरेज सिविल लेवल के भी, तब जब तक आप उसको पढ़ते नहीं है तब तक नहीं हो सकता ये। तो इस सिलसिले में जो चार पांच जो चीजें हैं वो आपके पास जो बेसिक जो टूल्स हमारे पास होने चाहिए वो हमें उनके लिए जरूरी होगा कि हम सबसे पहले तो हम कहते हैं कि इनके पैसिव रीडिंग नहीं होनी चाहिए। पैसिव रीडिंग का मकसद क्या है? पैसिव रीडिंग का मकसद ये है कि यानी कि हम मैं बिस्तर पे लेटा हूँ और मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स सपोज करें कि यानी कि एंट्रोपी पे या सर्किट थ्योरी पे या कहें कि यानी कि मशीन लर्निंग पे मैंने एक बुक पढ़ना चाह रहा हूँ एंड देन मैं बिस्तर पे लेट के मैं पढ़ना कहता हूँ कि मैं पढ़ लूंगा इसको, तो यानी कि इस तरह से नहीं होता है। आपने एक काइंड ऑफ एक्टिव होके पढ़ना होता है उसको, उसके नोट्स लें, उसके उसको हाईलाइट करें। ये यानी चार पांच चीजें अपने आप के पास रखें। नंबर वन डिक्शनरी अपने पास रखें, जो मटेरियल आपने पढ़ना है उसको आप रखें अपने पास, एंड देन उसके हाईलाइटर होना चाहिए आपके पास, एक नोटबुक होना चाहिए आपके पास, आपके पास एक पेन होना चाहिए ताकि पेन से आप नोट कर सकें चीजें, हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकें आप चीजें को, एंड देन उसके बाद अपनी डिस्ट्रेक्शंस को मिनिमाइज करें। मिनिमाइज यानी कि आप कहें कि नहीं, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम मैंने कोई किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो देन आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये सपोज करें कि यानी कि मैंने मैसेज भी, फेसबुक का नोटिफिकेशन भी देखना है एंड देन व्हाट्सएप के मैसेज भी देखने हैं एंड फिर मैंने साथ में पढ़ना भी है, या बल्कि ये भी देखा गया है कि यानी कुछ लोगों के पास टीवी सामने खुली होती है और देन वो किताब भी पढ़ रहे होते हैं, तो दैट्स अपने आप को ये धोखा देना होता है। इससे आपकी कोई कंप्रिहेंशन नहीं डेवलप होती, इससे आपका कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। ये अपने आप को आप कह रहे थे कि बस मैं ठीक ही कर रहा हूँ, मैं इसको मल्टीटास्किंग में कह रहा हूँ कि यानी एक ही चीज़ भी कर रहा हूँ दूसरी भी कर रहा हूँ, नहीं होती इस तरह से। जब तक आप उस फ्लो में नहीं आ जाते, जब तक आप उसके कहें कि उसके अंदर नहीं आ जाते, तब तक वो चीज़ अपने आप को आश्कार नहीं करती, वो तब तक उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि हमारे पास टेक्निक जिसे कहा जाता है पोमोदेरो टेक्निक। पोमोदेरो टेक्निक, पोमोदेरो इज बेसिकली कहते हैं टोमेटोस, टोमेटोस को इटालियन में। तो उस टेक्निक का जो बेसिक है पर्पस वो ये कि 25 मिनट्स के हमारे पास सेशंस हम करते हैं कि यानी कि आप 25 मिनट्स तक अपने आप को बाकी सब चीज़ों से कट ऑफ कर दें कि मैंने यानी कि आप कहें कि यानी कि नहीं, ना तो मैंने कोई नोटिफिकेशन देखना है, ना किसी को किसी चीज़ को खाने के लिए उठना है, ना टॉयलेट के लिए उठना है, ना मैंने कोई चीज़ मैंने नहीं करनी फॉर दीज 25 मिनट्स। फॉर दीज 25 मिनट्स मेरे पास एक चीज़ है एंड देन मैं इसको करूँगा वो। एंड होगा ये कि यानी कि आपके पास जब 25 मिनट्स पूरे होंगे तो देन आप देखेंगे कि यानी आपके पास एक स्मॉल स्केल ऑफ विक्ट्री आपने की होगी, जो कि आपको अपने आप पर भी फख्र हो रहा होगा कि मैंने चीज़ें, आई हैव डन दैट थिंग। एंड सेकेंड ये होगा कि यानी कि उस चीज़ के बारे में एक छोटी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, और देन फिर आप 5 मिनट्स का पॉज लें एंड देन फिर एक और 25 मिनट्स का सेशन करें, देन 5 मिनट्स की पॉज लें, और उसमें फिर आप उन 5 मिनट्स में चाहे आप व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन देंगे, बट दैट्स फॉर 5 मिनट्स। लेकिन फिर आप अगर आपने वो उसको लंबा दौराने कर दिया, फिर ये होगा कि फिर आपको बस अगेन उस बैक फ्लो में आने के लिए आपको फिर बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इसको 25 मिनट्स को आप फिक्स करें कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना। अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो घर वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको एक नोटिस लगा दें कि डू नॉट डिस्टर्ब फॉर दीज फ्यू मिनट्स, फॉर 25 मिनट्स। और उसके बाद सपोज करें कि कोई ख्याल आ जाता है इसमें ना, कि आप इंसानी जहन में कहते हैं कि नहीं कि कोई 60,000 ख्याल आते हैं दिन में, तो ख्याल आएंगे इस तरह से नहीं है उनको, लेकिन फिर आपके पास एक डायरी होनी चाहिए या आपके पास कोई नोट्स का होना चाहिए जिसमें से आप नोट करेंगे, चलो मैंने कॉल करनी है एक फलां दोस्त को इन द इवनिंग, तो दैट्स वाई आपने उसको नोट कर लिया, बट अगेन करना नहीं है आपने ये। होता ये है कि आप नमाज में हम जब जाते हैं तो हमें सब सब चीज़ें पुरानी याद आती हैं कि ये करना है ये करना है, पढ़ने जब बैठेंगे तो फिर ये होगा कि हमें वो याद आएंगे कि ये करनी है चीज़ें। जब फिर फेसबुक पर बैठते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि यानी कि कितना टाइम गुजर गया। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जब आप जिस चीज़ के अंदर हैं उस चीज़ को फुली कंसनट्रेट करें, एंड अगर उसके दरमियान कोई ख्याल आ जाता है तो उस चीज़ को ना करें। अगर आपको लगता है कि नहीं कि मुझे ईमेल चेक करनी है, फेसबुक चेक करना है, तो सिंपली नोट करें कि आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन आई हैव टू डू दिस थिंग, वो नोट करना है, एंड बस देन अगेन गो बैक टू योर वर्क। वो उससे ये होगा कि आपके पास एटलीस्ट जब आपने 4 सेशंस कर दिए इसके, तो देन यू कैन टेक लॉन्गर ब्रेक। वो फिर 30 मिनट्स की करें, आप 1 आवर की करें, डजेंट मैटर। आपके पास अगर आप उसको बाहर जाना चाह रहे हैं, वॉक के लिए चले जाएं, आपके लिए कोई रनिंग करनी है आप उसको कर लें, कोई गेम खेलनी है कोई। लेकिन जब आप 1 घंटा बैठते हैं वो, तो वो घंटा सिंसियरली आप उसको दें, उस चीज़ को दें, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है वो न्यूरो साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ना, उसके अंदर 2 मोड्स होते हैं। एक होता है कंसंट्रेट फेज एंड एक होता है डिफ्यूज फेज। कंसंट्रेट फेज में ये होता है कि हमारे पास कंसंट्रेट मोड, 2 मोड्स कहते हैं, कंसंट्रेट मोड एंड देन सेकंड इज डिफ्यूज मोड। जो कंसंट्रेट मोड है उसमें ये होता है कि हम चीज़ों पे फोकस करते हैं, एंड देन वी एब्जॉर्व दिस थिंग्स इन साइड अवर जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो माइंड का जो जीव सेल्स हैं उसके अंदर, उसको समझें कि हजम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, जब वंस वी आर डन विद दैट थिंग, देन फिर ये होगा कि फिर उसके बाद हमारे पास हमारे ख्यालात काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप सपोज विंडोज से बाहर देखते हैं, किसी विंडो से बाहर देखें आप, तो फिर आपका एक दिमाग एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। सपोज आप और ख्यालात आ जाते हैं, तो क्रिएटिविटी आपकी जो आती है, या शावर आप लेते हैं तो आपके एक अलग दुनिया में चले जाते हैं ख्याल, मुख्तलिफ शावरों चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो या जब आप सोते हैं तो देन अगेन आपके पास एक और डिफ्यूजन का मोड आ जाता है। तो माइंड जो है एक वक्त में, ये नहीं हो सकता कि जिस तरह से हम कहते हैं कि मैं फलां दिन से शुरू करूंगा और मैं 5 घंटे रोजाना पढ़ना शुरू करूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे एक दोस्त होते वो कहते थे कि नहीं कि जब मैंने नमाज शुरू करनी है, नमाज लेकिन शुरू करनी है तब जब मैं फजर पढ़ूंगा। तो फजर उसकी 4 साल गुजर गए लेकिन वो फजर उसकी कभी नहीं आई और उसने बाकी नमाजें भी नहीं पढ़ी। लेकिन उसके बनस्बत अगर कोई और होता तो नहीं, सपोज कहते चलो ठीक है कोई मसला नहीं, फिलहाल मगरब से शुरू करते हैं, मगरब इशा पढ़ते हैं, एंड देन मगरब इशा 1 साल पढ़े चलो ठीक है, फिर देन जोर इस पर भी आ जाता, फिर फजर पर भी आ जाता, ये दैट इज रियलिस्टिक वर्क। लेकिन अगर आप एकदम कहते हैं कि नहीं मैंने एक रात में सारा याद करना है और एक एक दिन में मैंने 5 घंटे पढ़ने, तो ये मसल ग्रोथ नहीं होती इस तरह से, आप एक्सपर्ट नहीं बनते इस तरह से। आपने स्लोली स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने यानी कि आप कहें कि 10 घंटे सोएं, डजेंट मैटर आप, लेकिन जो आप बाकी जो आपके पास सपोज करेंगे 14 घंटे आपके पास, उनको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस वक्त पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज में हो। उस वक्त कोई आपके इमोशन, कोई एंगर अगर आपके पास, समझें कि यानी कि आप, समटाइम्स ये होता है हम सबके साथ कि हम एक पेज को स्टार्ट करते हैं शुरू से एंड आखिर तक चला जाता है लेकिन पता नहीं चलता कि यानी कि इसमें लिखा क्या हुआ, मैंने क्या पढ़ाया इसको। तो होता ये कि कोई मुझे गुस्से के, कोई मोहब्बत के, कोई और किस्म का जज्बा या कोई मेरी कंप्रिहेंशन नहीं बन रही होती और मेरे ख्यालात किसी और जगह होते हैं और मैं कहता हूँ कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तो देन लीव इट फॉर सम टाइम, गो फॉर वॉक, किसी दोस्त के साथ कॉल कर लें, कोई और चीज़ देख लें। लेकिन जब व्हेन यू आर बैक टू वर्क, फिर आप उसका दिमाग आपका जो होना चाहिए वो दैट शुड बी 100% देर। तो ये पोमोडोरो टेक्निक जो है इसका बेसिक, आपके पास जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसके लिए आपके एक अलार्म क्लॉक चाहिए जिसके लिए 25 मिनट्स का, आप अलार्म क्लॉक ना रखें, आप उसके एक स्टॉप वॉच रखें उसमें अपने मोबाइल फ़ोन में, या इसमें बहुत सारी एप्स आ गई हैं इसमें मोबाइल फ़ोन में एंड लैपटॉप्स में आपके ब्राउजर में, लेकिन उस 25 मिनट्स में और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 1 घंटे का सेशन, 4 25 मिनट्स के सेशन करें देन टेक ब्रेक, बिगर ब्रेक करें आप, सिर्फ पहले दिन सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ें आप, एंड देन यू विल फील डिफरेंस। 1 घंटा अगर आप करें एंड देन तो आपको बात चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड टेक्निक हम जिसको फैन रिचर्ड फेमन टेक्निक कहते हैं, और ही वॉज वेरी, अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप बात बाकी और चीज़ें भी देखते होंगे, लेकिन इसको जो है फेमन टेक्निक, फेमन के बेसिकली फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं दैट्स आर रियली इंटरेस्टिंग, या उसके जो जिस तरह से मोस्टली साइंटिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर खड़ूस होते हैं, वो अपनी लैब में होते हैं, वो दे आर नॉट गुड टीचर्स बट ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर। तो उसके जो लेक्चर्स आप देखेंगे कि वो किस तरह से कनेक्ट करता है चीज़ों को, एक सिंपल कॉन्सेप्ट से बिल्ड करता है एंड देन ही गोज टूवर्ड्स अदर थिंग्स। तो फेमन की जो बेसिक टेक्निक थी वो ये कह रहा था कि बेसिकली आप एक चीज़ को पढ़ें, ठीक है, सपोज मैं वेलोसिटी को पढ़ रहा हूँ, एंड वेलोसिटी को पढ़ के मैं एक उसके मैंने पढ़ी एक मरतबा चीज़, एंड देन मैंने उसको डिस्क्राइब किया किसी और दोस्त को, किसी और फेलो स्टूडेंट को, अगर कोई भी नहीं मिल रहा तो देन मैंने राइट अप कर दिया उसको, ठीक है। तो देन मैंने कहा कि नहीं कि दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ठीक है, मैंने एक मतलब लिखा, एंड देन फिर मैंने कहा कि अच्छा ये तो इस ये मैं किसी एक सादा बंदे को नहीं बता सकता, सपोज छठी क्लास का एक बच्चा है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको उसको किस तरह समझाऊँ, वेक्टर क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये डिस्टेंस क्या होते हैं, इस तरह से। तो फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको सेकेंड इटरेशन में जाऊँगा और देन उसको अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करके जब फिर जाकर देखूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको अगेन, एंड देन अगेन आई फाइंड के नहीं इसमें और चीज़ें हैं जो कि अगर मैं किसी और को बताऊं जिसको फिजिक्स का बैकग्राउंड ना पता हो तो देन वो उसका सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो देन आप एक थर्ड इटरेशन करते हैं एंड थर्ड इटरेशन में आपको पता चलता है कि नहीं कि नहीं, अब मैं इसको विदाउट एनी बज वर्ड, विदाउट एनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, विदाउट एनी फिजिक्स के जो टर्म्स और वोकेबलरी और आप कहें कि बाकी जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किए बगैर मैं इसको किसी और बंदे को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इट मीन्स नाउ आई एम गेटिंग द सेंस ऑफ द थिंग, नाउ आई एम गेटिंग द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग। अब जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो देन आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको 5 सालों के बाद भी आपको याद होगी रहेगी आपको, ये नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई आपसे पूछने आया कि नहीं गया ये पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा तो था लेकिन अब वो सेमेस्टर हो गया आप मुझे। तो ये ग्रेड्स एंड दीज थिंग्स डजेंट मैटर, दैट दीज डू मैटर, नहीं इस तरह नहीं है कि मैटर नहीं करती, ये मैटर करती हैं बट आपकी लॉन्ग टर्म में आपके पास ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तो दैट्स वाई आप इनको ज़रूर इन दो टेक्निक्स को फिलहाल स्टार्ट करें, एंड बाकी और भी एक और टेक्निक जिसके SQ3R मेथड होता है, जिसे हम सर्वे क्वेश्चन रीड राइट रिव्यू, उस मेथड को मैं शायद मेरे पास शायद टाइम ना बचाए तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फिर इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट टाइम कब आए तो उस वो और कोई और टेक्निक्स जो होंगे बाकी कोई और दोस्त या मैं कभी इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देन हमारे पास ये पता चलेगा कि व्हाई वी शुड रीड, व्हाट एंड हु शुड वी रीड एंड हाउ शुड वी रीड, सो आई थिंक देन प्रीटी मच दैट्स ऑल अबाउट द रीडिंग थिंग्स। एंड एक और चीज़ जिसे मैं एम्फसाइज करूँगा वो ये है कि अपने आप के अंदर ये जो डिफ्यूज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके अंदर आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी क्रिएटिविटी को टाइम दें, ये सिर्फ नहीं है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को, ये कॉन्सेप्ट अपने बनाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट का जब इंटरेक्शन होता है तो साइंटिस्ट और ये जो क्रिएटर्स होते हैं वो इन डिफरेंट आइडियाज के मिलने से ही नई चीज़ें बनाते हैं, तो सिर्फ आप फोकस्ड हैं उन चीज़ों पे जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं किसी चीज़ में तो फिर देन यू कैन नॉट क्रिएट। तो कहते हैं ना कि अच्छा है कि पास अकल के साथ रहे पासवान है हरम अकल, बट कभी कभार उसे तना भी छोड़ दे, तो दैट्स वाई देने कि आप उसको थोड़ा सा आप अलग करेंगे उसको तो वो उसके ज़रिए नए आइडियाज़ आएंगे, फिर आप अपने थीसिस में, रिसर्च में और जहाँ कहीं भी आप राइटिंग में लिख सकते हैं उसे। एंड कुछ हमारे दोस्त करते थे और मैं भी कभी कभार करता हूँ यानी कि आप बट नॉट रेगुलर, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, के जितने बुक्स पढ़े हैं या आप जो कोई मटेरियल पढ़ते हैं आप उसका एक रिव्यू काइंड ऑफ लिखें, क्योंकि जिस बंदे ने लिखा है उसने उसको आप समराइज करें कि इसने इस बुक का क्या मकसद था। वो जो चाहे छोटा सा एक 50 पेजेस का किताब हो, कोई रिलीजियस बुक हो, कोई साइंटिफिक बुक हो, कोई नॉवल हो, उसका एक शॉर्ट समरी आप लिखें कि आपने उससे क्या लर्न किया। तो उससे आपको ना सिर्फ आपके रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगे बल्कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे उससे। तो दैट्स वाई आई थिंक दैट आई शुड स्टॉप हेयर अबाउट द रीडिंग, एंड फिर इंशाल्लाह उसमें होगे तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, सपोज करें कि अगर हमारे पास राइटिंग में है तो राइटिंग में किस तरह से होना चाहिए। राइटिंग में अगेन ये कहता हूँ कि फेसबुक और ये इसने मोबाइल ने हमारी राइटिंग का जो है ना सत्यानाश कर दिया है। तो उसमें ये हुआ है कि हमारे पास हमारे ना तो स्पेलिंग, जो टेक्निकली हम पहले लिखते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारी बहुत ज़्यादा आ गई हैं आजकल के, जो THX आई थिंक थैंक्स होता है, PLZ होता है, प्लीज होता है, और बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप उसको लिखना चाहें तो फिर बनता नहीं है सेंसेस को, और फिर रोमनाइज उर्दू आ गई है, तो देन उर्दू और सिंधी और वट एवर लैंग्वेज। तो उसमें ये हुआ कि आपको जो बेसिक जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो लिखना भी भूल गए हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो ये करें कि फुल राइट, फुल स्पेलिंग, फुल उसका जो कोशिश करें ग्रामेटिकली ठीक है। आजकल कोई पैसे नहीं लगते मैसेज के और टैक्स के, तो फेसबुक पोस्ट पे या किसी पे, तो फुल लिखें उसके। उससे आपकी एक इंटरनली आपका जो माइंड काम करेगा वो ये होगा कि उसको एटलीस्ट उसकी जो छाप बनेगी वो कंप्लीट सेंटेंस वाली बनेगी। सो दैट इज द वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज कि हमारे पास हम हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊं तब मैं जाके लिखना शुरू करूंगा। तो दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, बिकॉज सपोज करें कि आपने इंग्लिश में लिखना है फॉर योर ओन थीसिस, रिसर्च पेपर या CSS में या किसी और जगह में, तो उससे होता यह है कि उस स्टेज पे हम कभी नहीं पहुंचते कि इंग्लिश में अगर हम काम कर रहे हैं तो इंग्लिश की सारी वोकैबुलरी हमें आ जाए, बल्कि वो इंग्लिश लोग जो खुद हैं अमेरिकन्स हैं, जो US के लोग हैं, उनको नहीं आते। या सपोज करें कि आपसे मैं पूछूं कि नहीं कि अगर उर्दू स्पीकिंग है तो आप गालिब या इकबाल की उर्दू आपको कितनी आती है, या शालतीब और सच्चल की आपकी सिंधी कितनी आती है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन कि आपको परफेक्ट हो जाए लैंग्वेज में फिर आप स्टार्ट करें, बट स्लोली आप स्टार्ट करते हैं, देन यू लर्न फर्दर फ्रॉम द मिस्टेक्स। सिमिलरली एक अगर बच्चा अगर ये कोशिश करे कि नहीं कि वो जब तक वो परफेक्ट चलना शुरू नहीं होगा तो तब तक नहीं चलना चलेगा, तो कभी वो चल सकता है? नहीं चल सकता, वो कभी भी नहीं चल सकता। तो होता ये कि बच्चा एक मरतबा चलता है, देन फिर ये उसका माइंड जो है ना वो खुद ही उन एक मरतबा गिरता है, फिर देन उसको फिर खुद ही उठता है, रोता है, एंड देन फिर आके दोबारा चलना शुरू करता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है वो। तो हमारा माइंड एक वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, मशीन को पता नहीं, सुपर कॉम्प्लेक्स मशीन आई थिंक, सुपर मशीन। तो वो भी इस तरह से आप जब खुद ब खुद राइटिंग लिखना शुरू करेंगे तो समटाइम्स समटाइम्स आपको जरूरत पड़, बल्कि बेहतर है अगर मिल जाए आपको कोई करेक्शन करने वाला, जो कि जिसको आप अपने दिखाएं कि यानी कि ये चीज़ें मैंने लिखी है इसमें क्या क्या गलती है, आप उसको करेक्ट करें। तो बहुत अच्छे लोग हैं जो कि आपका, आजकल तो इंटरनेट पे भी आपको कुछ दोस्त मिल जाएंगे जो आपको करेक्शन कर देंगे। अगर नहीं भी करते तब भी आपका माइंड ऐसा है कि वो जब आपने सपोज करें जो मैंने पहले बात की थी कि आप एक्सपर्ट्स को पढ़ेंगे तो फिर आपका माइंड खुद ब खुद कनेक्शन बनाता है। सपोज मैं आपको कहूं कि ना आपने ना टू जो है ना ING के साथ नहीं लिखना, टू ईटिंग नहीं कहना आपने, कभी नहीं लिखना, या आपने टू डन नहीं लिखना, सही है? तो मैं आपको 10 मरतबा भी बताऊं लेकिन आप जब तक तो खुद उसको रियलाइज नहीं करेंगे तब आप उसको करेक्शन नहीं करेंगे। तो ये करेक्शन जो आती है वो खुद अपने आप जो खुद लिखते जाते हैं, फिर देन उसको आप पढ़ते नहीं ये चीजें तो मैंने सही नहीं लिखी, तो दैट्स व्हाई मुझे उसे उसको मैं करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ, एंड देन फिर मेरी उससे राइटिंग रफ्ता रफ्ता इम्प्रूव हो जाती है। एंड सेकेंड है कि हमारे पास जो जो बेसिक हम बुक को हैं कि छोटे से ऐसे से शुरू करें, तो ऐसे क्या एक बेसिकली माय फ्रेंड सपोज करें कि एक आइडिया है, माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड में से वो एक फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। अब हर पैराग्राफ एक आइडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि सपोज करें कि माई लाइकनेस ऑफ माई फ्रेंड, तो हमारी कॉमन हैबिट्स कौन सी हैं, तो यानी कि आप एक कहेंगे कि इनके एक हैबिट्स का एक आपके पास आ गया एक पैराग्राफ। एंड सेकेंड ये ली आप कहें कि विच थिंग्स वी डू टुगेदर, एक हो गया एक्टिविटीज वाला। तो उस एक काइंड ऑफ मैप बनाते हैं हम, जिसमें से हम कहते हैं कि सपोज एक चीज है जिसमें से है हैबिट्स, दूसरी है हमारे पास एक्टिविटीज, तीसरी है हमारे पास नेबरहुड, चौथी है हमारे पास स्कूल। तो हम क्या कहते हैं, एक वर्ड है, देन उसको हम एक्सपेंड करते हैं, उससे उसको एक्सपेंड करते जाते हैं करते जाते हैं, ताकि वो अब चार पांच सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बन जाता है। एंड देन फिर एक और आपने फिर अब सेकेंड पैराग्राफ लिया, एक वर्ड लिया, उसको स्टार्ट किया। आजकल निस्बतन आसान है लिखना, बिकॉज के इस पे फेसबुक पे और बहुत सारे लोग हैं जो कि आप अपने उर्दू में लिखें, सिंधी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, तो आप लिख सकते हैं उसको, और उसमें से लोगों तक आप अपने आइडियाज पहुंचा सकते हैं आराम से इस तरह से। तो इसी तरह से स्लोली आप स्टार्ट करें, एंड देन होपफुली वन वन डे इंशाल्लाह यू विल बी वेरी परफेक्ट राइटर, एंड बाकी चीज़ें भी हो जाएगी। तो आई थिंक कि मैं आपके पास जो 45 मिनट्स था वो पूरे कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी फिर, कोई बहुत सारे लोग हैं उन दोस्तों के पास, तो इंशाल्लाह कोई और दोस्त कंटिन्यू करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, बट आई वॉज ट्राइंग टू श्रिंक दैट इन टू 45 मिनट्स। बाकी इंशाल्लाह होगी तो फिर इंशाल्लाह बाकी दोस्तों या किसी और सेशन में बात करें। थैंक यू आप सब दोस्तों का मौका देने का मुझे शुक्रिया, और सब दोस्तों का सुनने का शुक्रिया, और सब आप सब दोस्तों को सलामत रखें।